दिन भर 20 अक्टूबर दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदर। मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा।
कहीं ना कहीं सौरव गांगुली ने मुझ में शायद एक टेस्ट प्लेयर भी देखा होगा। वो मुझे बैक नहीं करते तो शायद मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता। अगर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता तो शायद इतने सारे रन या हंड्रेड्स नहीं बना पाता।
जस्टिन ट्रूडो होंगे कनाडा के नए प्रधानमंत्री और बातचीत करेंगे गोमांस पर एक विवादास्पद लेख लिखने वाले तुफैल चतुर्वेदी से।
गौ हत्या करने वाले पातकी का वध पाप नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट भाषा में।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। दुनिया के सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में गिने जाने वाले भारत के ओपनिंग बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने ऐलान किया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। अपने 37वें जन्मदिन पर उन्होंने ये ऐलान किया। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले दुनिया के 4 बल्लेबाजों में से एक सहवाग भारत के अकेले ही खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। सहवाग ने एक बयान में उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उन्हें क्रिकेट के बारे में सलाहें दी, लेकिन उन्होंने इस बात के लिए माफी भी मांगी कि उन्होंने ज्यादातर सलाहों पर अमल नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी मामलों की एजेंसी ने कहा है कि ग्रीस में इस साल आने वाले प्रवासियों की संख्या 5 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है। ज्यादातर प्रवासी युद्धग्रस्त सीरिया, इराक और अफगानिस्तान से आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने कहा है कि सर्दियों ने दस्तक दे दी है, लेकिन ग्रीस के लेस्बोस, चियोस और सेमोस द्वीपों पर आने वाले प्रवासियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है और पिछले 4 दिनों में ये संख्या 35,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं स्लोवेनिया ने यूरोपियन यूनियन से प्रवासियों और शरणार्थियों के संकट से निपटने के लिए समन्वय बनाने की अपील की है। क्रोएशिया से आने वाले प्रवासियों को रोकने के लिए स्लोवेनिया की सीमा पर सेना तैनात की गई है। सीमा पर पहुंचे एक प्रवासी ने बताया।
All of people here want to cross this area to another side. They don't want to stay in Slovenia.
ये सारे लोग सीमा पार कर आगे जाना चाहते हैं। ये सब लोग एक पल के लिए स्लोवेनिया में रहना नहीं चाहते। वो सीमा पार कर दूसरी तरफ जाना चाहते हैं। वो खाना नहीं चाहते, पैसे नहीं चाहते, कुछ भी नहीं चाहिए, बस सीमा पार करना चाहते हैं। ये थे एक प्रवासी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। कनाडा में विपक्षी लिबरल पार्टी ने संसदीय चुनाव जीत लिया है। इसी के साथ कनाडा में कंजर्वेटिव पार्टी का 9 साल का शासन समाप्त हो गया है। लिबरल पार्टी के जस्टिन ट्रूडो अब सरकार बनाएंगे। निवर्तमान प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने हार स्वीकार कर ली है। फ्रांस ने रूस के राजदूत को तलब कर फ्रांस के सैनिक विमान और एक रूसी विमान के काफी नजदीक आ जाने के मामले में लगाए गए आरोपों पर विरोध जताया है। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रूस के दावे गलत हैं और सोमवार को रूस में फ्रांस के राजदूत को तलब करने का विरोध भी किया है। फ्रांस का दावा है कि घटना में शामिल दूसरा विमान स्विट्जरलैंड का था। सीरिया में कार्यकर्ताओं के मुताबिक रूसी हवाई हमलों में लताकिया प्रांत में जजबल अकराद क्षेत्र में एक विद्रोही कमांडर समेत 40 लोगों की मौत हो गई है। इनमें विद्रोही लड़ाके और नागरिक दोनों शामिल हैं। लताकिया राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थकों का गढ़ माना जाता है, जिस पर पिछले साल विद्रोहियों ने पकड़ बनाने की कोशिश की थी। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। नजफगढ़ के नवाब के नाम से मशहूर और दुनिया के सबसे विध्वंसक बल्लेबाजों में से एक वीरेंद्र सहवाग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वीरू के नाम से मशहूर सहवाग दुनिया में एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके नाम टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी और वनडे में डबल सेंचुरी दर्ज है। 2011 की वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रहे सहवाग ने एक दिवसीय मैचों में 219 रन का शानदार स्कोर दिसंबर 2011 में इंदौर में वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया था। आदेश कुमार गुप्त की रिपोर्ट।
There it is. Huge six. 300. And can you believe it? He got a 100 with a six. He ramped it over third man. He made his mind up.
ये लम्हे हैं साल 2004 के जगह पाकिस्तान, जहां पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत के सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने छक्का लगाकर अपना 13 शतक पूरा किया और इसी पारी की मदद से भारत ने पाकिस्तान को एक पारी और 52 रन से हराया। ये वही टेस्ट मैच था जिसके बाद उन दिनों दिल्ली के नजफगढ़ में रहने वाले वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान कहा जाने लगा। आज उन्हीं मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग ने आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया।
Pretty happy with my career and if I made any mistake, if I hurt anybody, so sorry for that. So I'm really, really happy that now I'm retiring from international cricket.
वैसे इस खबर की अटकलें कल रात से ही जारी थी। कभी दुनिया भर के गेंदबाजों के लिए लगभग डर का दूसरा नाम रहे वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकेट के हर प्रारूप में अपनी छाप छोड़ी। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 104 मैच खेले और 2 13 शतक सहित 23 शतक और 32 अर्धशतक जमाए। उनके बल्ले से 8,586 रन निकले, 319 रन उनका सर्वाधिक स्कोर रहा। उन्होंने 91 कैच पकड़े और 40 विकेट भी लिए। वीरेंद्र सहवाग ने अपना पहला टेस्ट मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ब्लोमफोंटेन में साल 2001-2002 की सीरीज में खेला और पहली पारी में ही शतक बनाते हुए 105 रन बनाए, जबकि इससे 2 साल पहले वो भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट खेलना शुरू कर चुके थे। सहवाग आज भी सौरव गांगुली को नहीं भूलते, जिन्होंने चयनकर्ताओं के खिलाफ जाकर सहवाग को न सिर्फ टीम में शामिल किया बल्कि उन्हें खिलाया भी।
कहीं ना कहीं सौरव गांगुली ने मुझ में शायद एक टेस्ट प्लेयर भी देखा होगा। वो मुझे बैक नहीं करते तो शायद मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता, अगर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता तो शायद इतने सारे रन या हंड्रेड्स नहीं बना पाता।
वीरेंद्र सहवाग ने अपना जलवा एक दिवसीय क्रिकेट में भी खूब दिखाया। उन्होंने 251 एक दिवसीय मैचों 15 शतक और 38 अर्धशतक की मदद से 8,273 रन बनाए। उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में 96 विकेट भी लिए। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ साल 2011-12 की सीरीज में खेले गए चौथे एक दिवसीय मैच में इंदौर में दोहरा शतक बनाते हुए 219 रन बनाए। उनसे पहले केवल सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाया था। सहवाग याद करते हैं अपने कुछ खास मैच।
जब हम लोग वर्ल्ड कप जीते वो भी एक लम्बा था, जब मैंने पहला 13 शतक बनाया वो एक लम्बा था मेरी लाइफ का, कि आज तक किसी हिंदुस्तानी प्लेयर ने 13 शतक नहीं बनाया तो मैंने बनाया। श्रीलंका ने 201 नॉट आउट रन बनाए और वो हम लोग टेस्ट मैच जीते। गावस्कर के बाद मैं दूसरा खिलाड़ी बना जिसने बैट थ्रू किया, जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मुझे याद रहेंगे।
सहवाग ने भारत के महान बल्लेबाजों सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण के साथ मिलकर भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयां दी। सहवाग आज भी अपने उन साथियों को नहीं भूलते।
मेरा जो बैटिंग स्टाइल था वो शायद फियरलेस इसलिए भी बना क्योंकि मुझे मालूम था कि पीछे आने वाले प्लेयर हैं, वो प्रेशर झेल सकते हैं, टीम को संभाल सकते हैं, रन बना सकते हैं।
सहवाग साल 2007 में पहला 2020 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य भी रहे। सहवाग भले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ना खेलें, लेकिन अभी भी वो हरियाणा रणजी टीम के कप्तान हैं और आईपीएल में भी पंजाब टीम का हिस्सा।
वीरेंद्र सहवाग का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा। बिशन सिंह बेदी का कहना है कि वीरेंद्र सहवाग ने अपनी शर्तों पर क्रिकेट खेली थी। आदेश गुप्त ने पूर्व टेस्ट क्रिकेटर अतुल वासन से बात की और पूछा कि सहवाग की उपलब्धियों को आप किस तरह से देखते हैं।
देखिए आप, चलिए उसने ट्राई कर लिया कि नहीं खेलेगा, पर उसके जैसा खिलाड़ी बहुत मुश्किल से मिलेगा, ये काफी कम लोगों के लिए कह सकते हैं आप। सहवाग के बारे में तो यही कहूंगा कि जिस तरह से खेलने का नजरिया और देखने का नजरिया है उसने दुनिया भर में चेंज कर दिया। जिस तरह से उसने जो अपना एटीट्यूड है जो दिखाया है, टेस्ट क्रिकेट को बदल दिया उसने, और ऐसे रेयर खिलाड़ी बहुत कम आते हैं। बड़ी अच्छी सोच है कि जब पता है कि वापस आने का मौका नहीं है तो युवा खिलाड़ियों को मौका दें। जबरदस्ती सेलेक्टर्स पे भी प्रेशर रहता है एक बड़े खिलाड़ी को वापस आने का, तो वो प्रेशर हटा दिया और जहीर के बाद अब सहवाग के जाने से एक जो है एरा जो है क्रिकेट की वो धीरे धीरे
भारत ने विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीता। इसके अलावा 2020 टीम के भी सदस्य रहे जिसने विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीता, तो चाहे वो 2020 क्रिकेट हो, वनडे हो, टेस्ट मैच, तीनों में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी।
सबसे बड़ी छाप तो यह है कि उसने कभी घबरा के क्रिकेट नहीं खेली, 2 300 जो टेस्ट मैचेस में लगा सकता है, तो वो सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। बहुत लोगों ने वर्ल्ड कप जीते हैं पर पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशन एक ही खिलाड़ी ने 2 300 लगाए हैं, वो है मुझे लगता है सबसे बड़ी अचीवमेंट।
न्यूजीलैंड में भी उन्होंने शतक जमाया, पाकिस्तान में शतक शतक जमाया। ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से उन्होंने बेहद शानदार पारी खेली थी, उन इनिंग्स को लेकर आप क्या कहेंगे?
देखिए, अब खिलाड़ी के इतना लंबा करियर रहा और ऐसी अचीवमेंट रही हो तो आप 100 के बारे में बात नहीं करेंगे। जो स्पेशल अचीवमेंट जो मुल्तान में उसने पहला बनाया और कई बार जो 100, 200, 300 रन 6 रन से बनाए, ऐसी सोच बिना झिझक बिना डर की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मैंने तो कभी देखी नहीं न सुनी है। और ये मुझे लगता है कि जो एटीट्यूड था, जो अप्रोच थी, सिंपल रखा अपने आप को, कॉम्प्लिकेट नहीं किया अपनी गेम को, ये एक बात बहुत बढ़िया सीखने वाली है।
आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग हो या फिर कुछ और मामले, उनसे भी बहुत दूर रहे, आईपीएल की पार्टी से भी दूर रहे। क्या आपको लगता है कि सचिन के तरह सहवाग भी एक आइडियल खिलाड़ी रहे?
बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये एक बहुत समझी हुई इसकी अप्रोच थी। जानते थे कि भैया बिल्कुल दूर रहेंगे और खुद में इंटरेस्ट भी नहीं था उनको ऐसी चीजों में, बिल्कुल फोकस थे।
कोई अनुभव आपका उनके साथ ऐसा जिसे आप शेयर करना चाहें बीबीसी के साथ?
हाँ बिल्कुल, दिल्ली का कप्तान मैं था, तो जब सहवाग लोकल क्रिकेट में रन बनाने शुरू करे तो बोला गया कि इस खिलाड़ी को टीम में लिया जाए, पर डीडीसीए की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि इसे वनडे ही मैचेस खिलाया जाए दिल्ली के लिए, क्योंकि ये जिस तरह से बैटिंग करता है टेस्ट क्रिकेट में नहीं कर सकता या लंबे रणजी ट्रॉफी मैचेस में नहीं कर सकता। और आखिरकार इसी खिलाड़ी ने 200 लगाया इंडिया के लिए, ये मुझे हमेशा थोड़ा सा अजीब लगता।
वीरेंद्र सहवाग के बारे में बात कर रहे थे पूर्व टेस्ट क्रिकेटर अतुल वासन। कनाडा की दक्षिणपंथी कंजर्वेटिव पार्टी के तकरीबन 10 सालों के शासन के बाद कनाडा में लिबरल पार्टी बहुमत के साथ आम चुनाव जीत गई है। निवर्तमान प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने हार स्वीकार कर ली है और लिबरल पार्टी के नेता जस्टिन ट्रूडो अब कनाडा में सरकार बनाएंगे। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुना रहे हैं रोहित जोशी।
कनाडा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि संसद में तीसरे पायदान से कोई पार्टी बहुमत के साथ सीधे पहले पायदान पर पहुंच गई हो। चुनावी अभियान की शुरुआत में लिबरल पार्टी को तीसरे पायदान पर माना जा रहा था, लेकिन चुनाव परिणामों के आने तक एक भारी बदलाव के साथ पार्टी बहुमत से चुनाव जीत गई। इन चुनावों में लिबरल पार्टी को 184 सीटें मिली हैं, जो कंजर्वेटिव पार्टी को मिली 99 सीटों से बहुत ज्यादा हैं। वहीं शुरुआत में दूसरे पायदान पर मानी जा रही न्यू डेमोक्रेट्स को 44 सीटें ही मिल सकी हैं। अपनी हार के बाद निवर्तमान प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने लिबरल पार्टी के नेता जस्टिन ट्रूडो को बधाई दी है और कहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव परिणामों को बिना किसी हिचक के साथ स्वीकार करती है। हार के बाद अपने समर्थकों से बात करते हुए हार्पर ने पूरी तरह से इस हार की जिम्मेदारी खुद पर ली है। जिन लोगों ने पिछले एक दशक से हमारी पार्टी को मजबूत बनाया और जिन्होंने चुनाव अभियान के दौरान हमें मदद की है, हम आप सभी लोगों का दिल से आभार जताते हैं। आप सबको इस हार के बावजूद अपने प्रयासों पर गर्व महसूस करना चाहिए, लेकिन जो निराशा आप लोगों को हुई है उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है और केवल अकेले मेरी है, लेकिन ये सब कुछ कुछ ही समय के लिए है। अगली बार हमारी पार्टी कनाडा की जनता को हमारे रूढ़िवादी मूल्यों के आधार पर और अधिक मजबूत और स्पष्ट विकल्प देगी। ये थे कनाडा के निवर्तमान प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर के शब्द। चुनावों में इस हार के बाद स्टीफन हार्पर को कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा देना होगा। उधर लिबरल पार्टी के नेता जस्टिन ट्रूडो ने अपनी जीत के बाद कहा है कि कनाडा के लोगों ने इस बार असल बदलाव के लिए वोट दिया है। अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए ट्रूडो ने कहा है कि इन चुनावों में कनाडा की जनता ने एक स्पष्ट संदेश दिया है। This is what positive politics can do. इससे पता चलता है कि सकारात्मक राजनीति क्या कर सकती है। सकारात्मकता और उम्मीद से भरी एक टीम साथ काम करके कुछ भी कर सकती है। कनाडा की जनता ने आज एक स्पष्ट संदेश दिया है। मेरे दोस्तों, यह इस देश में बदलाव का समय है, एक सच्चे बदलाव का। ये थे जस्टिन ट्रूडो के शब्द। ट्रूडो ने अपने चुनाव अभियानों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश और पर्यावरणीय बदलावों से निपटने का वादा किया है। साथ ही उन्होंने कनाडा की ओर से सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ किए जा रहे बम हमलों के अभियान पर भी ध्यान देने की बात कही है। 43 साल के जस्टिन ट्रूडो कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो के बेटे हैं।
कनाडा में जस्टिन ट्रूडो नए प्रधानमंत्री होंगे।
देश दुनिया की खबरें 24 घंटे bbchindi.com के साथ।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फतल के साथ। पंजाब में रोज किसी न किसी इलाके में सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब को फाड़ने का मामला सामने आ रहा है। इसे लेकर कई शहरों में तनाव है और हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। पंजाब के 4 जिलों में सीमा सुरक्षा बल की 10 कंपनियां तैनात की गई हैं। अमृतसर से रविंदर सिंह रॉबिन की रिपोर्ट।
पंजाब में भड़की हिंसा और तनाव के चलते पंजाब के 3 बड़े शहरों में अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है। इसी तनाव के चलते पंजाब सरकार ने नवंबर में होने वाले कबड्डी वर्ल्ड कप का आयोजन भी रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि गत दिनों श्री गुरु ग्रंथ साहिब की कथित तौर पर हुई बेअदबी के विरोध में पंजाब भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारी अकाल तख्त और अन्य तख्तों के जत्थेदारों का भी विरोध कर रहे हैं। आज अमृतसर में कुछ प्रदर्शनकारियों ने एक रोष मार्च निकाला और जितेंद्र सिंह जो वहाँ उस प्रदर्शन में थे हमसे बात करते हुए उन्होंने कहा,
अही डिमांड कर रहे हैं कि ये जेडे तख्त के जथेदार इस्तीफे देन, जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की उन्होंने अरेस्ट किया जाए ता कि सिखां दे हिरदे जेड़े आ वो शांत हो सके।
हालांकि प्रदर्शनकारियों को शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। संत समाज ने प्रदर्शनकारियों को एक सीमित समय कर देने की भी अपील की है। उनका कहना है कि हफ्ते में प्रतिदिन 3 घंटे के लिए बंद रखा जाए और उसमें भी लोगों को कोई परेशानी ना आए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी तरफ बढ़ रहे तनाव और आने वाले त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन ने अमृतसर, लुधियाना, जलंधर में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी है। आज अमृतसर, जलंधर शहरों में इन अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च भी निकाला और हमसे बात करते हुए अमृतसर के पुलिस कमिश्नर जितेंद्र सिंह औलक ने कहा,
6 कंपनियां सप्लीमेंट की गई है सिटी में, क्योंकि कल को 21 अक्टूबर पुलिस कमेमोरेशन डे है, परसों को दशहरा है, उसके बाद दिवाली तक सीजन के लिए, तो ये थोड़ा समय सप्लीमेंट कीजिए। सिटी में बिल्कुल आज शांति है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ चल रही है।
पंजाब के बिगड़ते हालातों पर चर्चा करने और इसके हल निकालने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कैबिनेट की आज एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। हालांकि इसमें कोई एजेंडे का ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन समझा जाता है कि इसमें मुख्य तौर पर पंजाब में अमन शांति की बहाली ही होगा। अकाली दल अब ये मानता है कि हालात पहले से नॉर्मल होते जा रहे हैं, पर उनका यह भी कहना है कि पंजाब में गड़बड़ी फैलाना किसी एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। बीबीसी से बात करते हुए शिरोमणि अकाली दल के स्पोक्स पर्सन और एजुकेशन मिनिस्टर दलजीत सिंह चीमा का कहना है,
इसमें इम्प्रूविंग, क्योंकि बहुत इशू था, श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी का मसला था, इसलिए जो इमोशन है इस समय पे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी गवर्नमेंट ने इतने भी शहरों में कहीं भी कोई अमन कानून की स्थिति खराब करने की जो लोग कोशिश कर रहे थे उनके साथ साथ पहले समय भी दिया सबको के भावनाओं को देखते हुए, लेकिन अब जहाँ कोई गलती ज्यादा करेगा तो जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा तो वहाँ पे लाल लाल कायम करने के लिए सख्ती भी बढ़ा दी। डेफिनेटली इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी तो नजर आती है, लेकिन कौन है इसके पीछे ये पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद समझ आए।
पंजाब में लगातार चल रहे प्रदर्शनों ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हालांकि ये एक सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ इशू जरूर है, पर सरकार इसका हल निकालने की कोशिश कर रही है ये ऐसा दिखता है। अमृतसर से रविंदर सिंह रॉबिन।
ये थी रविंदर सिंह रॉबिन की रिपोर्ट। और उधर दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल 5 दिसंबर को ऐप पर आधारित टैक्सी सेवा उबर की टैक्सी में एक महिला के साथ हुए बलात्कार के मामले में ड्राइवर को दोषी करार दिया है। बचाव पक्ष के वकील धर्मेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि अदालत ने उनकी सभी दलीलों को नकार दिया। इस मामले में सजा 23 अक्टूबर को सुनाई जाएगी। जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
आरोपी 32 वर्षीय शिव कुमार यादव के खिलाफ मुकदमा एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला, जिसके कारण 11 महीने में फैसला सामने आ गया। अदालत ने कहा कि शिव कुमार अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों का दोषी है। उसे दी जाने वाली सजा के अनुपात पर दलीलें 23 अक्टूबर को सुनी जाएंगी। उबर कैब में महिला से बलात्कार की यह घटना 11 माह पहले हुई थी। घटना के समय 25 वर्ष की महिला गुड़गांव से दिल्ली के इंद्रलोक स्थित अपने घर जा रही थी। पीड़ित महिला ने घटना के बाद मोबाइल से कार की फोटो खींच ली थी। उसी फोटो के आधार पर पुलिस ने कार और ड्राइवर की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने उबर के खिलाफ कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उबर की टैक्सियों के चलने पर प्रतिबंध भी लगा दिया था, लेकिन ये पाबंदी बाद में उठा ली गई थी। हाल में उबर इंडिया के अमित जैन ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी कंपनी ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं।
The Delhi incident in December was absolutely horrific. It sent shockwaves throughout our company.
अमित जैन कह रहे थे कि दिसंबर में हुआ दिल्ली कांड बहुत भीषण था। इस वारदात ने हमारी कंपनी को हिलाकर रख दिया। हमने अपने यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। ये हमारी प्राथमिकता है। हम ड्राइवरों के बैकग्राउंड की जांच पड़ताल ठीक तरीके से करते हैं और यात्रा के दौरान हमने कुछ ऐसे उपाय किए हैं जिनसे मुसाफिर के पूरे सफ़र को मॉनिटर किया जा सकता है। ये थे उबर इंडिया के अमित जैन के शब्द। हाल के दिनों में बलात्कार के कई कांड सामने आए हैं। दिल्ली में दो नाबालिग बच्चियों के बलात्कार के कारण आम नागरिकों में गुस्से की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने दो युवाओं को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से एक बार फिर अपील की है कि दिल्ली पुलिस उनके हवाले कर दिया जाए। उनका दावा है कि एक बार पुलिस उनकी सरकार के अंतर्गत आ गई तो राजधानी दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित हो जाएगी। दिल्ली पुलिस की जवाबदेही इस समय सीधे तौर पर केंद्रीय सरकार को होती है। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
बिहार विधानसभा चुनाव पर बीबीसी की विशेष सीरीज बूझे ना बिहार को में आज जानते हैं कि बिहार में महिलाएं किस तरह से वोट करती हैं।
बूझे ना बिहार को सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार से आज का सवाल,
बिहार में महिलाएं किस तरह से वोट करती हैं।
एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई पड़ा है बिहार की महिला मतदाताओं के बीच में। अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो बिहार में महिला मतदाताओं का जो टर्नआउट, जो वोटिंग प्रतिशत था, वो पुरुष मतदाताओं की तुलना में काफी कम रहता था। ये गैप लगभग 15-16% होता था। कहने का मतलब, अगर 100 महिलाओं में से 50 महिलाओं ने वोट दिया तो वहीं 100 पुरुषों में से लगभग 65-66 पुरुष वोट डालते थे, तो बहुत बड़ा फासला होता था। लेकिन आज पिछले 4-5 सालों में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ा और यह परिवर्तन यह है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट डाल रही हैं बिहार में।
किसी की सलाह पर वोट डाल रही हैं, अपने पति या अपने बेटे की सलाह पर?
सबसे पहले इन आंकड़ों को पेश करना चाहूंगा। पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वोट लगभग 2014 के चुनाव और 2010 के विधानसभा चुनाव में 3-4% ज्यादा रहा। बिहार एक तरह से पहला राज्य हुआ 2010 में जहां महिलाओं ने पुरुषों को वोट डालने के मामले में पीछे छोड़ दिया। अब अहम बात यह है, क्या ये महिलाएं अपनी मर्जी से वोट डालने आ रही हैं या कि पुरुषों के सलाह पे वोट डालते हैं। आंकड़ों के दृष्टिकोण से ये बहुत स्पष्ट है कि पिछले 10 सालों में इस बात में भी बहुत परिवर्तन आया। बड़ी संख्या में महिला मतदाता अपनी मर्जी से वोट डालती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि महिला मतदाता वोट डालने में किसी का सलाह नहीं लेती, लेकिन जितनी महिलाएं पहले पुरुषों का सलाह लेती थी, चाहे वो पति का हो, बेटे का सलाह हो या अपने पिता से सलाह ले रही हों, उनकी तादाद में कमी आई है और आज ऐसी महिलाओं की संख्या कम हुई है जो दूसरों की सलाह पे वोट डालती हैं। अपनी मर्जी से अपना वोट देने का डिसीजन बड़ी संख्या में महिलाएं स्वयं ले रही हैं।
बूझिए ना बिहार को।
पिछले दिनों आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य में एक कहां बचा सम्मान शीर्षक से एक विवादास्पद लेख छपा, जिसमें दादरी घटना को सही ठहराया गया और बताया गया कि अथर्ववेद में कहा गया है कि गोमांस खाने वाले व्यक्ति को मौत की सजा देनी चाहिए। हमारे साथी विनीत खरे ने इसके लेखक तुफैल चतुर्वेदी से बात की और पूछा कि वेदों में ऐसा कहाँ ऐसा लिखा है।
वेद में इसके संदर्भ आपको चाहिए तो इसके लिए आपको मुझे एडवांस बताना चाहिए था कि
आपने यजुर्वेद का नाम लिया है।
मैं मुझे आपको थोड़ा समय दें, मैं अभी अपने फेसबुक अकाउंट पे पोस्ट पढ़ी हुई है, निकाल के बता देता हूँ कि ये संदर्भ है। तो कोई कठिन बात नहीं है
कि मार्कंडेय काटजू जस्टिस को कह रहे हैं कि आप गलत
जो नहीं काटजू ये कह रहे हैं काटजू ये कह रहे हैं कि वो स्वयं गोमांस खाते हैं। काटजू जाने में उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। बहुत से लोग काटजू के बारे में ऐसा कहते हैं, वो
पागल हैं। आप ये जो कह रहे हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर कोई वैदिक गाय खाता है या बीफ खाता है तो उसकी हत्या करना जायज है?
मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने ये कार्य किया है उनकी मानसिकता को समझे बगैर इसके बारे में कोई कठोर या मीठी बात नहीं कही जा सकती।
अखलाक के साथ जो हुआ उस पर आपके क्या विचार है, क्या हुआ जो सही हुआ?
अखलाक के बारे में 3-4 वर्जन हैं। एक ये है कि कुछ लोग गाँव के बाहर बैठे ड्रिंक कर रहे थे, कुत्ता एक काले रंग की पन्नी घसीटा।
वर्जन पे ना जाएं, जो उनकी हत्या हुई, जो हत्या हुई जिस तरीके से हत्या हुई उसके बारे में आप, सही हुआ गलत हुआ, और ये अगर ये लाइन आपकी मानी जाए तो
ये संदर्भित है। एक क्रिया की प्रतिक्रिया है,
यानी सही हुआ आप कह रहे हैं, आप इस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं।
मैं इसे इस तरह से नहीं कहूंगा कि ये सही हुआ या गलत हुआ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ये क्रिया की प्रतिक्रिया है और मैं इसका जज नहीं हूँ।
तो आप ये कहते हैं एक तरह से ये भी, इन्हीं करतूतों के फलस्वरूप संभवतः अखलाक गाय की कुर्बानी कर बैठा, पूर्ण तथ्य सामने आने बाकी हैं।
जी
तो एक्चुअली इनकरेक्ट है, फोरेंसिक रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि वो गाय नहीं मटन था।
जिस गांव में ये बिसाड़ा में ये घटना हुई है वहाँ सांप्रदायिक तनाव का कोई इतिहास नहीं, अखलाक की वहाँ कोई जानी दुश्मनी की साहब सात पीढ़ी से चली आ रही है, एक दूसरे के पक्ष के लोग मारते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। रहा सवाल उसके मटन निकलने का, ये घटना एक क्रिया की प्रतिक्रिया और इस क्षेत्र में गौ हत्या
तो
को लेकर
तो हुई नहीं ना सर।
नहीं ये आप तय कैसे कर रहे हैं?
ये तो मैं आप फोरेंसिक रिपोर्ट पे गलत है यार।
हाँ निश्चित रूप से गलत है, ये सरकारी काम है। एक आदमी जिसने जो भी किया उस व्यक्ति ने उसका तिलक कर दिया, तो मुलायम सिंह की सरकार ने 45,00,000 रुपए दे दिए, 4 फ्लैट देने की बात कही जा रही है, शुद्ध राजनीतिक कार्रवाई है।
आपने उस पे बहुत ही क्लियर बात नहीं कर रहे हैं।
इसके पीछे सरकार ये नहीं ला रही मगर सोशल मीडिया पर है कि वो बोरियों से दबाकर गायें ला रही थी, उनकी आंतें फटके बाहर आ गई थी। IBN 7 पर मैं परसों था, उसके जो चैनल पर जिन्होंने सज्जन ने मुझे बुलाया था उन्होंने कहा कि मेरी DM से बात हुई, गाय की आंतें बाहर फैली हुई थी और उन्होंने पब्लिक पर फायर किया बचने के लिए, तब लोगों ने मारा है। ये सारा मीडिया में नहीं आ रहा। एक सीधी सी बात आ रही कि एक व्यक्ति को पकड़ गए जो सहारनपुर का रहने वाला था, उसे वहां मार दिया गया।
बहुत आसान तरीके से
यही बहुत मीडिया को ब्लेम करना, नहीं आसानी से प्रेस्टिट्यूट शब्द नहीं बना है।
लेकिन आप जब कह रहे हैं कि वेदों में इस तरह से लिखा है तो आपने पढ़ा है और आप उसके आधार पर कह रहे हैं?
जी मैंने आपसे कहा ना कि आप मुझे 2 मिनट दें, मैं अभी नेट खोलता हूँ, फेसबुक से आपको उसके रेफरेंसेस दे देता हूँ कि ये रेफरेंसेस हैं।
क्या लिखा है मुझे जरा बताएंगे कि क्या लिखा हुआ है अगर आसान भाषा में?
गौ हत्या करने वाले पातकी का वध पाप नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट भाषा में।
कितने हजार साल पहले, कितने 100 साल पहले लिखा गया होगा ये मुझे बताएंगे?
नहीं कह सकता, हजारों वेद का काल तो जो भारतीय वांग्मय मानता है, भारतीय परंपरा मानती है, वो करोड़ों साल में।
तो उसका आज के लिए क्या रेलेवेंस है? मतलब करोड़ों साल के बाद 2015 में उस जो करोड़ों साल पहले चीज लिखी गई उसका आज के लिए क्या रेलेवेंस है?
हमारा समाज जिन नियमों से चलता है, कानूनों से चलता है, वो हमेशा रेक्टिफाई होते रहते हैं, हर चीज़ बदलती रहती है और कुल मिलाकर उसकी अंतिम परिणति ये होती है कि सारे नियम सारे कानून प्रत्येक व्यक्ति के लिए बराबर हों। ऐसा ना हो कि ब्राह्मण के लिए अलग हों और क्षत्रिय के अलग हों और राजा के लिए अलग हों और सेवक के लिए अलग हों, नियम सबके बराबर होना चाहिए। यही प्रजातंत्र है, यही मानवता है, यही ह्यूमन राइट्स हैं, ऐसे ही होना चाहिए। वैदिक साहित्य में अगर इसी कोई बात कहेगी तो वो रिलेवेंस आज इस माने में नहीं है कि यहाँ पर कानून नहीं चलता वैदिक, और वेद का कहा हुआ कानून कभी भी नहीं रहा है। कानून तो स्मृतियाँ हैं, वेद थोड़ी है, स्मृतियों से चलता है। तो ये जो नियम चले आ रहे हैं हमारे बीच में, मगर जो समाज बना है लगातार उसकी मानसिकता कहाँ से बनी है, और उसको समरसता का काम सारे समाज का है। भारत को हिंदू अकेले नहीं बनाते, ईसाई मुसलमान पारसी यहूदी सब मिलकर बनाते हैं। तो इसमें सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसा कुछ ना किया जाए कि दूसरों को तकलीफ हो।
तो फैल चतुर्वेदी के साथ बात कर रहे थे विनीत खरे। और इस बीच खबरें आ रही हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य अमित मिश्रा के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है। मेरे सामने बैठे हुए हैं आदेश, बताइए क्या विवरण है आपके पास?
जी दरअसल अगर एक न्यूज़ चैनल की खबर पर भरोसा किया जाए तो खबर ये है कि पिछले महीने की 25 तारीख को जब भारतीय क्रिकेट टीम बेंगलोर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले अभ्यास कैंप में थी तब अमित मिश्रा ने अपने होटल के कमरे में एक महिला के साथ मारपीट की। कुछ ऐसा भी कहा जा रहा है कि शायद वो अमित मिश्रा के मित्र हैं, हालांकि इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। और उस महिला ने फिर 2 दिन बाद अशोकनगर थाने में ही बेंगलोर में अमित मिश्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और आज बेंगलोर में पुलिस ने अमित मिश्रा को एक नोटिस भेजा है जिसमें उन्हें 5 दिनों के भीतर ही जवाब देने को कहा है। तो अब देखना है कि इस घटना में आगे क्या कुछ होता है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदेश। और चलते चलते एक नज़र मुख्य समाचारों पर।
BBC समाचार। भारत के ओपनिंग बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने ऐलान किया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थियों मामलों की एजेंसी ने कहा है कि ग्रीस में इस साल आने वाले प्रवासियों की संख्या 5 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है। वहीं स्लोवेनिया ने यूरोपियन यूनियन से प्रवासी संकट से निपटने के लिए समन्वय बनाने की अपील की है। कनाडा में विपक्षी लिबरल पार्टी ने संसदीय चुनाव जीत लिया है। लिबरल पार्टी के जस्टिन ट्रूडो नए प्रधानमंत्री होंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के पूर्व मेयर को भ्रष्टाचार के मामले में 13 साल जेल की सजा सुनाई गई है। इसराइल के दौरे पर पहुंचे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने इसराइल और पश्चिमी तट में बढ़ रही हिंसा को रोकने के लिए तेजी से प्रयास करने के लिए कहा है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाला था हेमंत कुशवाहा ने। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।